आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत आज टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अपनी बात रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा प्रदेश में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल, बेंगलुरु में मिले 8000 करोड़ के प्रस्ताव और मुख्यमंत्री आज सीधी जिले से जारी करेंगे लाडली बहना योजना की मासिक किस्त। अब समाचार विस्तार से। भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रतिबंध समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कराना है और इस संगठन को पाकिस्तान द्वारा मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों से भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस बारे में सीआरपीएफ के डीजीपी ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों के चलते नक्सलियों के सरेंडर की संख्या में वृद्धि हो रही है और वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।
सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले चार महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है।
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। कल शुरू की गई 11 दिन की इस यात्रा का उद्देश्य नागरिकों, समुदायों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय गौरव तथा एकता की भावना पैदा करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में भी तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। रतलाम जिले में भी आज विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापारी और निवेशक मध्य प्रदेश आएं और उद्योगों को बढ़ावा दें। मध्य प्रदेश सरकार ने नई उद्योग केंद्रित नीतियां लागू की हैं। सभी जिलों में उद्योग प्रकोष्ठ खोले गए हैं। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक, पानी और बिजली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को बेंगलुरु में हुए रोड शो के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। इंटरेक्टिव सेशन में विभिन्न निवेशकों से चर्चा हुई। वहीं निवेशकों से करीब 7,935 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 18,975 नए रोजगार सृजित होंगे।
मुझे इस बात का संतोष, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी में आकर हमने जब अपने निवेशकों से चर्चा की तो इसमें लगभग सन फार्मा के 3000 करोड़ का HESS, इसका 2000 करोड़ का BEML, 1800 करोड़ का अरविंद मिल्स, 600 करोड़ का अभिग्ना समूह लॉजिस्टिक, 100 करोड़ का नोइज गारमेंट्स परिधान टेक्सटाइल का, 385 करोड़ का HTCL टेक्नोलॉजीज IT का, 50 करोड़ का, सब मिलाकर लगभग 8000 करोड़ का निवेश और 19000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को प्रदेश के रायसेन के ग्राम उमरिया में 148 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया है। रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण परियोजना स्थापित की जाएगी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9406523035। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को सीधी जिले की तहसील गोपत बनास सीधी खुर्द से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई माह की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीधी के दोहनी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की मई माह की किस्त के 1,552,38,00,000 रूपये अंतरित करेंगे। लाडली बहनों को मिलने वाली यह 24वीं किस्त है। योजना में प्रत्येक लाडली बहना को प्रत्येक माह 1,250 रूपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े सामान की बिक्री को लेकर अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबा इंडिया, ETC, फ्लैग कंपनी और फ्लैग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसी सभी सामग्रियां हटाने और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों BLO को जल्द ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें। श्री कुमार ने नई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बूथ स्तर के अन्य अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। बैंकॉक में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पुरुष सिंगल्स में थारुन मन्नेपल्ली का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की मालविका बंसोड़ का मुकाबला थाईलैंड की रत्चानोक इंटोनोन से और भारत की उन्नति हुड्डा का सामना थाईलैंड की पोर्णपावी चोंचुवोंग से और आकर्षि कश्यप का मुकाबला थाईलैंड की सुपनिडा कटेथोंग से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना और मैहर जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य जोरों पर है। विभाग को 67,000 मानक बोरे संग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है। इंदौर जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संभाग स्तरीय कार्यशाला आज और कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर फिनिक्स हॉल में आयोजित की जाएगी। कटनी में 18 आयुष्मान मंदिर में कल नेत्र और ENT समस्याओं के लिए देखभाल अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। गुना जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम फतेहगढ़ ब्लॉक बमोरी में प्राचीन बावड़ी की सफाई एवं शपथ संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी जिले के उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 256 जोड़ों का विवाह हुआ। इस मौके पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी उपस्थित रहीं। और आगरमालवा जिले में कल हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिले में लक्ष्य से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।